गिन लेते कितने अफराद हुए।
घबराने की बात नहीं है, इतने ज्यादा नहीं है कि जगह कम पड़ जाए।
निकाह की एक सादा सी तकरीब करनी है
और 20-30 मेहमानों से भी शानदार शादी थोड़ी हो सकती है।
अपने रेडियो से किसी को नहीं बुलाएंगे।
अच्छा
मनीषा खाला,
कब से ये साहिबा खाला बन गई?
मेरी सारी नजदीकी दोस्तें तुम्हारी खाला ही हैं, बहस मत करो।
ओहो।
अच्छा तो आप अगले 3 दिनों में आ सकती हैं?
नहीं बेटा, अगर तुम्हें और तराना बेटी के घर में कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी नहीं है। बहुत अच्छा है, मैं खुद आ जाऊंगी। सुल्तानी साहब की कोई खबर है?
हमने मुलाकात का वक्त तय कर लिया है, मैं उनके फोन का मुंतजर हूँ।
उफ़ भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अपने बेटे की तरह।
जी नहीं, आप इत्मीनान रखें,
मार्केट में सुल्तानी की बहुत इज्जत है।
इस्माइल मुझे अफसोस है, वजह इसके कि तुम्हारी मदद करती मैंने अपने काम भी तुम्हारे सर डाल दिए हैं।
फिलहाल तो मैं भी यहाँ पे बेकार बैठा हूँ, तराना
और उसके घर वाले सारा इंतजाम कर रहे हैं, आप परेशान ना हो।
ठीक है, मैं
कोशिश करूँगी जल्दी पहुँचूँ। दुकान कैसी चल रही है?
ठीक है, बेहतरीन तरह से चल रही है।
क्यों, क्या हुआ है?
नहीं, नाहिद साहिबा कैसी?
ठीक है, खुदा का शुक्र है।
तमाम मसरूफियतों के बावजूद इसी की कसर थी। कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, माँ काशान तशरीफ रखती हैं, मेरे काम पड़े हुए हैं और ये किस्सा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है।
इस्माइल साहब, अगर मैं आपकी जगह होती तो जरूर मकसूदी साहब से बात करती, और मेरा ख्याल है वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
मेरी समझ में नहीं आता, अगर उन्हें पैसे की जरूरत है तो हमसे क्यों नहीं मांगा? आपको इससे जल्दी हमें बताना चाहिए था, इन हालात में नहीं।
असल माजरा यह है कि मैं सोच रही थी कि सब कुछ अपनी जगह पर जल्द ही वापस आ जाएगा।
उनको मालूम था आप समझ चुकी हैं, लेकिन उन्हें इत्मीनान था या कम अज कम ये सोच रहे थे कि आप नहीं बताएंगी। क्यों?
नहीं मालूम बेटी।
आप अंदर नहीं आएंगे?
नहीं बेटी, तुम जाओ।
आप नहीं जानते इन दिनों मुझ पर क्या गुजरी है। मैंने ये सारी मुसीबतें इस वजह से झेली हैं कि मैं किसी का एहसान ना लूं।
आपका काम सही था, आप परेशान ना हो, कल मैं नासिर साहब से बात करूंगा। आप भी किसी को मत बताइए कि मुझसे कुछ कहा है।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
तुम यहाँ कैसे पहुँची?
बहराम चाचा के साथ आई हूँ।
तुम्हारे चाचा कहाँ हैं?
चले गए।
एक मिनट।
हेलो,
सलाम वालेकुम बेटे।
सलाम वालेकुम, आप कहाँ से फ़ोन कर रही हैं?
जेल की एक अफसर के मोबाइल से। मैं नाहिद के पास हूँ, वो तुम्हारी आवाज़ सुन रही है।
वालेकुम अस्सलाम।
इस्माइल बेटा, तुम बच्चे को ढूंढने के लिए जाने वाले थे ना, क्या हुआ फिर? नाहिद यहाँ बैठी हुई है, तुम्हारी आवाज़ सुन रही है, मेरी बात नहीं मान रही है, सोच रही है उनके बच्चे को चुरा लिया गया है।
मैंने सुल्तानी साहब से बात की है और ब्रिगेडियर रिजाई को भी मुत्तला कर दिया है, वो भी खुद आए थे।
अच्छा।
उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं है कि उनका बेटा कहाँ है, लेकिन वादा किया है कि उसे किसी न किसी तरह ढूंढ निकालेगा।
अगर वो भी अपने बेटे की तरह निकला तो?
देखिए नाहिद साहिबा, सुल्तानी साहब के फरिश्तों को भी इस बात का पता नहीं था, वो अपनी इज्जत की खातिर ही सही अपने बेटे और बहू को ढूंढ निकालेंगे।
अच्छा तो हमें कब इत्तला देंगे?
जैसे ही उनको अपने बेटे के बारे में कुछ पता चलेगा, मुझे या फिर ब्रिगेडियर साहब को फोन कर देंगे।
ठीक है बेटा, अगर कोई सुराग मिले तो हमें फौरन मुत्तला करना।
बहुत अच्छा, अपना ख्याल रखिए।
खुदा हाफिज बेटा, बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
तुम्हें इत्मीनान हो गया?
मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, मेरी जिंदगी में इस कदर हादसे पेश आए हैं कि अब किसी पे यकीन नहीं आता।
जानती हूँ बीबी, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारा बच्चा जल्द अज जल्द मिल जाए।
बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम।
आइए आइए इस्माइल साहब। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। कुछ दिनों से तो आप तशरीफ ही नहीं लाए थे, हम तो भूल ही जा रहे थे कि हमारा मालिक कौन है। बैठिए। आज हम गरीबों को कैसे याद कर लिया?
फूफी जान कैसी है?
मोनिस की तबीयत तो कभी अच्छी नहीं रहती, ये जान लो कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ी नहीं तो वो अच्छी ही है। क्या किया जा सकता है, हर किसी का एक नसीब होता है। हमारे नसीब में साइकेट्रिस्ट और कब्रिस्तान और घर में होने वाली टूटू में। हाजी साहिबा कैसी है, तुम्हें कोई काम है या सिर्फ मिलने आए हो?
अस्सलाम वालेकुम।
आप अपने लड़के के स्कूल जाना चाहती थी, आप जाइए।
मैं नहीं जानता कैसे शुरू करूं, सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्यों।
तुम लोगों ने बिना सोचे समझे उसकी बातें मान ली?
जी नहीं, उसकी बातें नहीं, इस रजिस्टर की बातें। किसी तरह की मुताबिकत नहीं, आप खुद जानते हैं।
हाँ जानता हूं, बहुत वक्त हो गया मुताबिकत नहीं।
इस तरह से मेरा जवाब मत दीजिए, मुझसे कहिए कि तुम गलती कर रहे हो, मुझे धोखा दीजिए, झूठ बोलिए, इस तरह से, लेकिन मेरा जवाब मत दीजिए।
अब मैं दुकान की हिम्मत नहीं रखता।
तो दुकान की चाबियां और चेकबुक्स वापस कर दीजिए।
तुम क्या सोचते हो, अगर हाजी साहब होते तो क्या करते? इंसान माँ के पेट से चोर बनकर नहीं आता है, हर एक का एक किस्सा होता है। हाजी मुर्तजा और मेरा किस्सा कमजोर और ताकतवर का किस्सा है। अलबत्ता इस दरमियान कुछ चीजें भी दखील रही हैं, गुलनाज की मौत, महमूद का बाहर जाना और मोनिस का चिड़चिड़ा मिजाज।
आप खुद जानते हैं कि ये सब बहाने। नासिर साहब, अगर ऐसी बात है तो हर इंसान को चोरी करनी चाहिए, है ना?
हाँ मानता हूँ, लेकिन इसका पेश खेमा होना चाहिए। मेरे चोरी करने का मैदान भी ये दुकान है। इसके बाद गुलनाज की मौत, उसके बाद हाजी मुर्तजा और ये फिक्र कि उनका पैसा और जायदाद किसके हिस्से में आएगी। बिलखसूस जब करज की दुकान का किस्सा सामने आया तो मैं अपने आप से कहने लगा कि हाजी मुर्तजा की इतनी खिदमत करने के बाद मेरे नसीब में क्या आएगा। मैं खुद को कह रहा हूँ, मैं जब अपने आप को कह रहा हूँ तो मेरा मकसद मुनिस नहीं है, मैं नासिर मकसूदी, मैं कि जिसने हमेशा मुनिस के जेर साया जिंदगी गुजारी है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं लंबी लंबी और बड़ी बड़ी आरजुएं रखता हूं तो झूठ है। अगर ये कहूं मुझे पैसा जमा करके महमूद को भेजना था तो ये भी सही नहीं है। अगर ये कहूं कि पैसा चुराकर मैं जजीरे हवाई में तफरी करना चाहता था तो ये भी बेबुनियाद है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं अपनी किस्मत से इंतकाम लेना चाहता था तो मैंने गलत नहीं कहा है। मुझे लत पड़ गई है, मुझे चोरी करने की लत पड़ गई है। कभी कभी सोचता हूँ, हाजी मिर्जा को पता चल गया था लेकिन उन्होंने रवादारी की। शायद ये भी सोचते होंगे अगर वो मेरा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे तो मैं भी उनकी हैसियत और आबरू से खेल जाऊंगा।
नासिर साहब, आपका एहतराम अपनी जगह, लेकिन मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे मरहूम बाप पर ये इल्जाम लगाएं।
ठीक है, ठीक है। तो अब तुम क्या करना चाहते हो?
आप सब कुछ मेरी तहवील में दे दें और तशरीफ ले जाएं।
मेरे साथ ऐसा मत करो।
अगर पुलिस केस हो जाए तो हम सब के लिए बुरा है।
मैंने तो बहुत पहले अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर दी है।
इसका क्या मतलब हुआ?
मैं रहूंगा। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा कि कोई और रास्ता तलाश करो।
कोई भी रास्ता?
हाँ, कोई भी रास्ता। अब बेहतर होगा दरवाजा खोल दो, मैं बाहर जाकर ताजा हवा खाना चाहता हूं। तुमने मेरा ये रुख नहीं देखा था ना?
नहीं अम्मी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी आवाज को क्या हुआ है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं हुआ है। मैंने ब्रिगेडियर साहब से भी बात की है, अभी कोई खबर नहीं है। नहीं, हम गए थे और सारे होटलों और मुसाफिर खानों की लिस्ट चेक कर ली, हमें कुछ नहीं मिला। आप परेशान ना हो, अगर कोई सुराग मिला तो आपको फौरन फ़ोन करूँगा। कोई बात नहीं है फिलहाल, आप देखिए। देखिए अम्मी, बाद में फ़ोन करूँगा। खुदा हाफिज़।
वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी? तुम्हारा मोबाइल भी बंद आ रहा है।
कहाँ जा सकती हूँ?
देखो, मैं भी इंसान हूँ मोनी साहिबा, परेशान हो सकता हूँ। शाम से यहाँ हूँ, तुम ना बताती हो कहाँ जा रही हो, ना ये बताती हो कि कब वापस आओगी, और तुम्हारा मोबाइल भी तो हमेशा ऑफ रहता है।
गुलनाज की कब्र के अलावा कहाँ जा सकती हूँ?
अच्छा, ना जाती जुम्मे को साथ में चलते।
आपके साथ? जिंदा लोगों से फुर्सत नहीं है, मुर्दों के लिए कहां से वक्त होगा।
काश तुम भी कुछ जिंदा लोगों की फिक्र करती।
जिंदा अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें मुझसे क्या काम है?
मुझे तो है।
क्या काम है?
मैं शायद तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं रखना चाहिए क्या? तुम्हें मेरा हाल अहवाल नहीं पूछना चाहिए?
मकसूदी साहब, अब क्या हुआ है?
जाइए, आप अपना हाथ मुंह धोइए, आइए। मेरे हाथ का पकवान पसंद करती हैं या नहीं?
नहीं, कुछ जरूर हुआ है।
मैं बावर्ची खाने में खुद को मार भी डालूं तब भी तुम्हारे करीब नहीं पहुंच सकता।
तुम रवादारी करके ना खाओ।
अरे, मेरे खाने से क्या काम है, अपना खाइए।
क्या तुम्हारे लिए हाफ फ्राई कर दूं?
नहीं।
आज दुकान में मैंने एक झोला उठाकर दूसरी जगह रख दिया, जिससे मेरी कमर में दर्द हो रहा है, टीस उठ रही है, काफी दर्द है मोरिस।
तो वो दोनों वहां क्या कर रहे थे?
उन दोनों में से तो एक औरत है। मैंने इस्माइल से हजारों मरतबा कहा कि मर्द नौकर रख लो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मैं आप खातून को तो भारी चीजें उठाने की इजाजत नहीं दे सकता हूं।
आपकी गलती है।
हाँ, गलती तो मेरी है। मेरी उम्र के लोगों को रिटायर होना चाहिए, मैं भी यही सोच रहा हूं।
जी नहीं, आप घर पे नहीं बैठ सकते।
ठीक है, मैं कह रहा हूं यहां क्यों रहे? अपना सब कुछ बेचकर महमूद के पास चले जाएं, इस तरह वो भी तना नहीं रहेगा। हकीकत तो यह है कि मुझे पहले ही से तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मैंने गलती की, हमें चला जाना चाहिए था। यहां हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती, यहां सब लोग एक दूसरे पर शक करते हैं, तोहमत लगाते हैं, तुम्हें काम से निकालने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं। यहां रुकना किसी भी तरह से हमारे फायदे में नहीं। अगर हम लोग चले जाते तो क्या पता हमारी माली हालत अच्छी होती। तुम भी मानती हो इस बात को? मोरिस साहब, यहां रहने के लिए चैन और सुकून की जरूरत है, जिससे हम लोग महरूम हैं।
मेरा चैन सुकून तो गुलनास की कब्र पे जाने से है। इस खाने को भी कल टिफिन में लेते जाइए।
ज़िवाजी ज़िंदगी शुरू करना, वो भी एक सैंडविच से। ये लीजिए, खाइए।
थैंक यू।
अलबत्ता मैं खुद इस तरह की चीज़ों का आदी नहीं हूँ, ये बात कान खोल कर सुन लो।
तुमने पहले ही दिन से अपने आप को दिखा दिया है। हाँ,
आज हमें बहुत ज़्यादा काम है।
तुमने समीरा और सासा को दावत दी?
वो नहीं आ सकते, समीरा तो बेड रेस्ट पर हैं। इसके अलावा उनका घर भी तैयार हो रहा है ना, तो घर तब्दील कर रहे हैं।
अच्छा, तो आज साहिबा के पास नहीं रहेंगी? उसके बाद उनके घर का क्या होगा?
दरअसल मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम अपनी सास के साथ जिंदगी गुजारने में कोई मुश्किल नहीं। वाकई?
हाँ, क्यों नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं, बहुत अच्छा है।
अम्मी सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी।
गुलनास के साथ भी वो खुश थी।
हाँ, जब फूफी ने मेरे और गुलनास के इख्तलाफात में दखल अंदाजी शुरू की तो अम्मी भी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
काश ऐसा होता कि हम लोग तुम्हारी फूफी और मकसूदी साहब को भी दावत दे सकते। अगर कहो तो मैं उन्हें फ़ोन करके दावत दूँ। तुमने तो कहा था कि माकूल इंसान है।
जी नहीं।
क्यों नहीं, शायद तुम लोगों के इख्तलाफात खतरे कम हो जाए।
जी नहीं, मकसूदी से मेरा झगड़ा हो गया है, मैंने उनसे कह दिया है कि वो दुकान पर ना आए।
क्या मतलब, आप लोगों की मुश्किल इतनी संगीन है?
जी हाँ, इतनी संगीन है कि पुलिस भी आ सकती है।
ये बात मुनिस फूफी को मालूम है?
जी नहीं।
उनको क्यों नहीं बता देते? शायद वो मदद कर सके। उन्हें बताए बगैर कोई चारा नहीं है।
अबू जान, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, तबीयत संभल जाएगी।
अब मुझे हमसायों से पता चलेगा कि बाबा अस्पताल में है।
ये यहां क्या कर रहा है?
बाबा जान, मैं बहराम हूं आपका बेटा।
इससे कहो यहां से चला जाए, मैं इससे बात करना नहीं चाहता हूं।
अब जब मैं अस्पताल में एडमिट हूं तो मेरा बेटा बनकर आया है। मैंने दसियों दफा इससे कहा अपने बच्चों की खबर ले ले, इसने सुनी अनसुनी कर दी। आप क्या लेने आए हो, जाओ दफा हो जाओ, सूरत दफान करो। इन आखिरी लम्हों में मैं हर चीज भुला देना चाहता हूँ। कम अज कम इस बेचारी औरत से कह सकूं एक गिलास पानी पिला दे।
बाबा जान मैं परेशान हूँ, बहुत से मसाइल में उलझा हुआ, मेरे आसाब खराब है इस वक्त, मुझे हजारों खदशात लाहक हैं। आपको कोई खबर है मेरे दिल की? क्या आप जानते हैं मैं क्या झेल रहा हूँ?
इन बातों का इन बेकस बच्चों से क्या ताल्लुक है? अच्छा बताओ, तुम जानते हो तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तुम खुद को बाप समझते हो? जाओ बाहर जाओ, मैं वसीयत करता हूँ मेरे जनाजे को ये कांधा ना देने पाए।
बाबा जान आप मुझसे नाराज हैं अपनी जगह पर, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। मैंने जो भी किया है वो अपने खानदान के लिए किया है, हम सबके लिए किया है।
पूरे खानदान के लिए था जो बहमन को कहीं का ना रखा और अपने चोर दोस्त का साथ दिया? ये पूरे खानदान के लिए था जो तुमने अपने बीवी बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया? जाओ अपना काम करो, अब मेरे पास ना आना। जिस तरह से बहमन मर गया, मैं समझूंगा तुम भी मर गए।
बाबा जान।
बहराम, अबू जान की तबीयत ठीक नहीं है, अभी जाओ जाओ। अबू जान थोड़ा सा पानी पी लीजिए ना।
सलाम अलैकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम। ये खुल नहीं रहा है।
बदल दिया है।
क्या?
मैंने ताला बदल दिया है।
तुम मुझे क्यों नहीं बताया, किस वजह से?
ये सारी मुसीबतें क्या कम थी जो आप लोकमाए हराम भी ले आए?
इस्माइल आया था यहाँ, तुमने उसकी बातों पे यकीन तो नहीं किया है? हाँ, तुम यकीन नहीं कर सकती। हकीकत तो यह है कि उस बदतमीज लड़के को निकाल बाहर करती, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब हर जगह जाकर मेरी बुराई कर रहा है। मुझे तुम्हारे जैसा रवैया अपनाना चाहिए था। तुमने बहुत अच्छा किया जो पहले ही दिन से उनको सबक सिखा दिया। बदमाश इतने बरसों के बाद मेरे सामने खड़े होकर मुझसे कहता है कि दुकान से निकल जाएं। उसने क्या सोचा है, मैं उसका नौकर हूं जो जी हुजूरी करने लगूंगा? अच्छा जो तुम कहो, दरवाजा तो खोलो, मैं अंदर आ सकूं। बताता हूं कि उसे कैसा सबक सिखाया।
तुमने ये कैसे सोचा कि मेरे भाई की दुकान से चोरी करके हमें हराम खिलाओगे? अब उस दुकान में कदम नहीं रखोगे।
ये कैसी बातें कर रही हो, हमसायों के सामने ऐसी बातें अच्छी नहीं। बावर करो, ये झूठ है।
झूठ है? मैं तुम्हें किसकी कसम दूं है? अपनी बेटी गुलनाज की कसम दूं, कहो कि झूठ है, कह दो झूठ है।
Yeah.
सही तो ये होता कि हम लोग कुछ दिन और रुक जाते और तुम्हारा सोग भी खत्म हो जाता, उसके बाद उन लोगों की आख्त की तकरीब होती। लेकिन उन दोनों का प्रोग्राम बाज़ वजूहात के बिना पर हमेशा टलता रहा है। अलबत्ता खुद इस्माइल ने कहा था कि वो लोग बहुत ही सादा सा जश्न मनाएंगे।
इंशाल्लाह कि खुदा मुबारक करे।
अगर तुम यहां ना होती तो मैं साथ में चलती।
फिलहाल तो किस्मत यही है कि जेल में रहूं और अपने बच्चे के बारे में खबर का इंतजार करूं।
जो भी होगा अच्छा होगा। मेरा दिल बहुत बेचैन था। ये गुड़िया दिखाई दी मुझे, ये कोने में पड़ी हुई थी। मैं तुम्हारे लिए ले आई हूं, इसे यहां मुकम्मल कर लो, अलबत्ता जेल वालों की इजाजत से।
जानती है मैंने इसे कब बनाना शुरू किया? जब मैं 7 साल की थी, माँ के इंतकाल के 2 दिन बाद।
खुदा उनकी मगफिरत करे।
मैंने यकायक देखा मैं कपड़े की गुड़िया बना रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था गुड़िया बनाना। मैं रोती नहीं थी। दोबारा कोई मिल गया था जिससे बातें कर सकती, उसे गोद में ले सकती। मेरी तो आदत बन गई थी, रोने धोने के बजाय गुड़िया बनाती, अपनी तन्हाई में गुड़िया बनाती। यही गुड़िया मेरी मां बन गई, दोस्त बन गई, मेरे बच्चे। अकेली नहीं थी। आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
मैं दुकान गया था, देखा बंद है। आप ना तो टेलीफोन का जवाब देती हैं और न ही मोबाइल उठाती हैं।
तो
मुझे आपकी फिक्र लगी थी। मैंने सोचा कल की बातों के बाद खुदा न खासा कुछ हो ना गया हो। नासिर साहब कहाँ हैं?
पता नहीं।
आप कहें तो मैं उन्हें ढूंढूं। मुझे नहीं मालूम, तीनों बैठकर बातचीत करके मसला हल कर लें।
नहीं,
इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना।
कुछ ही दिन अकेले रहना चाहती हूँ।
मोनिस फूफी, कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जाइए। अम्मी भी 1-2 दिन में तेहरान आने वाली हैं। इस तरह ना आप अकेली रहेंगी ना अम्मी, है ना?
तुम जाओ अपना काम करो। परेशान भी ना हो, टेलीफोन का जवाब दूंगी।
हेलो,
सलाम अलैकुम। इस्माइल नदाब साहब?
जी फरमाइए, मैं बोल रहा हूँ।
मैं सुल्तानी बोल रहा हूँ।
जी बताइए हाजी साहब, मोहम्मद मिल गए?
मैंने इस वजह से आपको फ़ोन किया कि एक इल्तिजा करना चाहता हूँ, अगर आप वादा करें कि ये बात हमारे दरमियान रहेगी।
کیا ایسا وعدہ؟
یعنی یہ کہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ پولیس کو اطلاع نہ دیں۔
میں آپ سے التجا کرتا ہوں بیٹا، وعدہ کرتا ہوں نادم نہیں ہوں گے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ کیا گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ محمد کو ڈھونڈ نکالا ہے، اس سے بات ہوئی ہے، وہ بھی اپنے کام پر نادم ہے، لیکن اصلی قصوروار میں ہوں۔
اب کہاں ہیں وہ؟
میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے بچہ واپس کر دوں گا، بچے واپس کر دوں گا۔
آپ پولیس کو کیوں اطلاع نہیں دینا چاہتے؟
جو شخص جیل جانے کا مستحق ہے وہ میں اور محمد کی ماں ہے۔ ہم نے اس پر دباؤ ڈالا تھا کہ پوتا چاہیے، ایسا پوتا جو ہمارے گوشت و پوست سے ہو، ہمارا خون ہو۔ جب محمد کو سارا ماجرا بتایا گیا تو اس نے بچے کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میری بہو نہیں مانی۔ اس نے اس عرصے میں یہ دھمکی دی تھی کہ اگر بچہ واپس ہوا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ اس کے بعد بہو نے سب کو مجبور کیا کہ ملک سے چلے جائیں۔ وہ لوگ اپنی زیر تعمیر عمارت میں چھپے ہوئے تھے۔
بچہ آپ کہاں ہیں؟
ذرا صبر کرو۔ نہیں، آپ بیٹھ جائیے۔ اس کی ماں سے معافی مانگ لو۔
سلطانی صاحب، میرے خیال میں بہتر ہوگا آپ خود پولیس کے سامنے پیش ہو جائیں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو پولیس اسٹیشن لے جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔
میں اسے اس کے چچا کے پاس بھیج دوں گا باہر۔
مجھ سے صرف یہ نہ چاہیں کہ میں پولیس سے کچھ نہ کہوں۔
Oh.
السلام علیکم چھوٹی سی آپا، بہت بہت خوش آمدید. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، رونا نہیں. چھوٹی سی بچی. ہیلو بریگیڈیئر صاحب، میں نداف ہوں، اسماعیل نداف. جی جی، شکریہ، بہت بہت شکریہ. سچ پوچھیں تو بچہ مجھے مل گیا ہے. جی ہاں، اس وقت میرے پاس ہے. لیکن اصلی بات یہ ہے کہ آج میری شادی ہے، اگر اجازت ہو تو میں گھر جا کر تیار ہو جاؤں، پھر بچے کو لے کر آپ کے پاس آ جاؤں گا. شکریہ شکریہ، خدا حافظ. خدا حافظ. کیا ہوا بھائی؟
ناصر مقصودی جب دکان میں ہمیں آنکھ دکھاتا تھا تو ہم لوگ چپ جاتے تھے، اب دیکھو کیا حال ہے اس کا. میرے والد کہتے تھے کہ ایک سیب اچھالو گے تو وہ 100 بار گھوم کر نیچے یا گرے گا.
زیادہ نہ بولو، تمہاری حالت کہیں زیادہ خراب ہے، میں کیا سوچتا تھا.
میرے حالات تو جب سے پیدا ہوا ہوں ایسے ہی ہے. اب میرے حالات کی بات نہیں ہو رہی، تمہارے حالات اچھے ہونے چاہیے. ادھر ادھر کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، حق چھینا جاتا ہے.
کیسا حق؟ تم سوچ رہے ہو ان سے مجھے کیا ملتا؟
نہیں ملتا تو زبردستی چھین لو. تھوڑی سی خود اعتمادی اور طریقہ آنا چاہیے. اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ بوڑھے ہو گئے ہو، تمہارے پاس روزگار چلانے کے لیے کچھ بھی تو نہیں. گھر کیسے چلاؤ گے اپنے گھر والوں کا؟ تمہارا بیٹا جرمنی سے آ گیا، تمہاری حالت ہے کریلا وہ بھی نیم چڑا.
دیکھو دنیا ہمیں اب کہاں لے آئی ہے.
کیا تمہارے فون کا بھی جواب نہیں دیا؟ تم نے صحیح طریقہ نہیں اپنایا. میں تمہاری جگہ ہوتا تو تمہیں مزہ چکھا دیتا. وہ جب عیش کر رہا تھا تو دکان کی ساری ذمہ داری تمہاری تھی، اب وہ فون کا جواب بھی نہیں دیتا.
تم اپنا کام کرو.
میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہاری جگہ ہوتا تو اس لونڈے کا زہر نکال دیتا، آدمی بنا دیتا تاکہ سمجھ جائے اس کے مقابل کون ہے. اس طرح تمہاری بات مان جاتا. مانو میری بات.
ہیلو، السلام علیکم. بھائی بہرام، میں مقصودی ہوں. ہاں میں ہی ہوں. میرے بھائی ذرا سنبھل کر، سنبھل کر سنو. میں کیا کہہ رہا ہوں سنبھل کر سنو، ذرا آرام سے سنو. نہیں نہیں، بس ایک منٹ. دیکھو ایک بات ہے جو میں بہت دنوں سے تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے. سچ تو یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا، بہت صبر کیا کہ تمہیں نہ بتاؤں. صبر کرو.
ارے بہت بہت مبارک.
چلے بہرام کو میں اکیلا کنٹرول نہیں کر سکتا.
اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو تو کیا کہنا ہوگا؟
دوبارہ سے موریس کا سہارا لینے چاہتے ہو؟ میں تمہیں بے عزت کر دوں گا.
اس کی عزت جانے والی آپ ہیں.
اگر میرا دماغ گھوم گیا تو بہت نقصان ہوگا.
جی انسپیکٹر صاحب، میں نے بینک سے پیسے نکال لیے.
تمہیں مولا علی کی قسم ہے، مجھے اسے دیکھنے دو. مومن آدمی تھے، خوب کیا کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ.
اس سے زیادہ مجھے شرمندہ نہیں کرو.
ادھر دیکھو، اس کی ساری ذمہ داری میری، لیکن جو بھی تمہیں ملے گا 50-50.
کیا کر رہے ہو؟ نہ مارو.
کیا ہوا؟ اسماعیل ابھی تک نہیں آئے ہیں.